सलाम, मैं और मेरा भाई एक खूबसूरत पुराने घर के बागीचे में एक दरख्त के ऊपर रहते हैं। इस पुराने घर में एक सहन भी है जिसके बीच में एक प्यारा सा हौज है, और सहन के एक तरफ तीन कमरे दादा जान के हैं और दूसरी तरफ तीन कमरे हैं। ये एक कदीमी इलाका है। मैं अभी बता रही थी कि इस घर के एक तरफ दादा जान रहते हैं और दूसरी तरफ तकी अंकल अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस तरफ का पहला कमरा तकी अंकल का है जिसमें उन्होंने अपनी चीजें रखी हैं, और आखिरी कमरा जहरा आंटी का है जो घर की माँ है और वहाँ रहती है। दरमियान वाला कमरा बच्चों का है, अली और इसकी बहन फातिमा, वो दोनों इकट्ठे एक चीज से खेलते हैं और फिर झगड़ा भी करते हैं, फिर आखिर में दादा जान के पास आ जाते हैं। दादा जान इनकी सुलह करवा देते हैं, लेकिन अली फिर भी अपना गुस्सा दिखाता है। इस वक्त भी दादा जान के साथ बातें कर रहे हैं। अगर खामोश रहो तो इनकी आवाज़ों को सुन सकते हो वहाँ दादा के कमरे में। जरा सुनो।
दादा जान, खुदा कौन है?
फातिमा जान, खुदा वही है जिसने इस सारी जमीन को, आसमान को, तुमको, गर्ज ये के दुनिया की सब खूबसूरतियों को पैदा किया है।
वाह, कितना ताकतवर है।
कितनी कुदरत रखता है।
दादा जान, कितने खुदा हैं?
प्यारे अली, खुदा एक ही है, उसने खुद अकेले ही इस सारी दुनिया को खल्क किया है।
किसने कहा है कि एक है, शायद दो हो?
ऐसा ना कहो अली, ये कुफर है।
आओ अभी इन दो लोबिया को बागीचे में लगाएं, फिर इनको पानी दें ताकि ये बड़े हो जाएं। तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा।
जादू वाला लोबिया दादा जान?
नहीं जानता मेरे बेटे, जाओ इसे लगाओ और देखो आसमान तक जाता है या नहीं।
मैंने एक जगह पढ़ा है ये लोबिया जादू वाला है, जब ये बड़ा हो जाएगा और आसमान तक पहुंच जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा और उस जिन को मार डालूंगा, फिर उस सारे सोने को नीचे ले आऊंगा और उससे आइसक्रीम खरीदूंगा।
वाह वाह, वो लड़का जो जादू वाले लोबिया की कहानी में था इतना ताकतवर था, वो तो उस जिन को ना मार सका और आखिर उसने जादू वाले लोबिया के दरख्त को काट डाला, और तुम चाहते हो उस जिन को मार डालो।
उस वक्त उसके पास बंदूक नहीं थी, मेरे पास तो लेजर वाली बंदूक है। ठिशू ठिशू।
मैं भी फिर उस लोबिया के दरख्त पर आऊंगी और उस जादूगर पूरी औरत को ढूंढूंगी और फिर उससे कहूंगी कि जादू पढ़े ताकि दादा जान की कमर ठीक हो जाए और फिर उन्हें कभी दर्द ना हो, और मेरी अम्मी का दिल भी ठीक हो जाएगा और मेरे अब्बू सारे कर्जे अदा कर सकेंगे।
ओ फातिमा, कहीं वो बूढ़ी जादूगर औरत तुम्हें धोखा ना दे दे। अगर उसने ऐसा किया तो तुम मुझसे कहना, मैं पता ही क्या करूँगा, मैं सबको अपनी बंदूक से मार दूंगा। ठीक है।
अच्छा भाई, ये काम तो खत्म हो गया, अब आओ उसको पानी दे।
ए खुदा, जब मैं सोकर जागूं तो लोबिया को इतना बड़ा कर कि आसमान तक चला जाए।
गोरी।
पहले मैं। अरे फातिमा, ये क्यों आसमान तक नहीं गया?
लोबिया कुछ थोड़ा सा ऊपर आ गया है, अभी उसका सिरा मिट्टी से बाहर आया है।
तुम्हारा वाला लोबिया कुछ थोड़ा सा निकला है, वो तो मेरा लोबिया है। मैंने बागीचे के इस हिस्से में लोबिया लगाया था।
नहीं, बागीचे का ये वाला हिस्सा मेरा था।
नहीं, मेरा है। दादा जान।
अच्छा, चुप रहो, देखूं क्या मसला हुआ है। पहले अली तुम बोलो।
दादा जान।
नहीं, आराम से रोए बगैर कहो क्या हुआ है।
मैंने अपना लोबिया बगीचे के इस तरफ लगाया था, वो लोबिया का जो पौधा निकला है वो मेरा है।
नहीं दादा जान, अली ने बगीचे के दूसरी तरफ लोबिया लगाया था, ये पूरा जो निकला है वो मेरा है। बगीचे का उस तरफ वाला हिस्सा अली का है और इधर वाला हिस्सा मेरा है।
अच्छा, तो लड़ाई इस पर है कि बागीचे का इस तरफ वाला हिस्सा किसका है और दूसरी तरफ वाला हिस्सा किसका है। बैठो, पहले एक दोस्ती की चाय तुम्हारे लिए बनाऊं, फिर देखूंगा कि इस वाकये से क्या नतीजा लेते हैं। अच्छा अली, तुमने नहीं बताया कि इस वाकये से क्या दर्स लिया।
मैं समझ गया हूँ, जादू वाले लोबिया की कहानी झूठी है, कोई लोबिया भी आसमान तक नहीं जाता।
ओ मेरी फातिमा, तुमने क्या दर्स लिया?
दादा जान, एक रहनुमाई करेंगे।
रहनुमाई ये है, क्या तुम्हें याद है कि कल अली ने सवाल किया था, अगर खुदा दो होते तो क्या होता? अगर सच में खुदा दो होते तो क्या होता? मसलन सूरज और चांद एक खुदा के पास, सितारे समंदर और पहाड़ एक दूसरे खुदा के पास होते। मुख्तसर ये कि हर चीज आपस में तकसीम कर लेते तो क्या होता फातिमा?
किस तरह दादा जान, एक रहनुमाई और करेंगे दादा जान।
एक और रहनुमाई ये कि तुम दोनों आज एक अदद लोबिया पर लड़ रहे हो कि वो किसका है, या एक हिस्सा जमीन पर इस तरफ बागीचा और उस तरफ बागीचा किसका है, और हर कोई कहता है कि वो लोबिया मैंने लगाया था।
समझ गई लड़ाई, अगर चंद खुदा होते तो बिलाखिर एक दिन आपस में ही लड़ाई हो जाती।
कितनी हंसी और मजे की बात है, खुदाओं की लड़ाई। सूरज का खुदा चांद के खुदा से लड़ रहा है। लेजर शुआएं, ठिशू।
हाँ बेटा, बहुत मजाक वाली बात हो जाती, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है आपने कोई ऐसी लड़ाई देखी हो जो लोग ये कहें कि इस खुदा की उस खुदा के साथ लड़ाई है?
नहीं दादा जान, क्या ऐसा भी हो सकता है?
देखो बच्चों, सूरज चांद और सितारे बर वक्त आते हैं, अपना काम अंजाम देते हैं और बर वक्त चले जाते हैं। दिन के शुरू में सुबह सूरज तुलू करता है और दिन के आखिर में गुरूब कर जाता है। फिर चांद और सितारे आते हैं, वो भी सही वक्त पर आते हैं और सही वक्त पर गायब हो जाते हैं।
हाँ, मौसम बहार, गर्मियाँ, खिजा और सर्दियाँ भी तरतीब से और मुनज़्ज़म से आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है ना दादा जान, सब चीजें अपनी जगह पर सही और मुनज़्ज़म हैं, कभी भी झगड़ा नहीं होगा।
जी मेरी बेटी, ये नज़्म और अमन जो दुनिया के निजाम में है, बताता है सारी दुनिया को, हम सब को, एक खुदा और वो भी मेहरबान और अक्लमंद एक खुदा ने खल्क किया है।
दादा जान, खल्क क्या है, इसका क्या मतलब है?
यानी पैदा किया है। हुँ।
आए हो। एक अहम खबर है कि एक मेहमान आने वाला है, एक छोटा सा मेहमान। अली कीज के साथ बहुत दोस्ती है, जरा देखो।
आ गई हो बेटी।
दादा जान ये लीजिए लोबान।
फातिमा जाओ नीचे तहखाने से अंगेठी और कुछ कोयले ले आओ, ताकि लोबान का धुआं करें, वो लोग पहुंचने वाले हैं। भागो, जल्दी करो, भागो।
जी अच्छा दादा जान। यहाँ क्यों बैठे हो अली? उठो उठो, आओ घर साफ करें, ताकि जब हमारा भाई आए तो हमारा घर साफ हो, जिस तरह से गुलदस्ता होता है।
मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई नया काम करूँ, ताकि सब खुश हो जाएं। मैं सोच रहा हूँ कि सहन के इस तरफ से उस तरफ तक उल्टा सर के बल चलूं।
अली तुम बहुत बुरे हो, आज बजाय इसके कि तुम मेरी मदद करो घर साफ करने में, तुम बैठे सोच रहे हो।
नहीं मैं बुरा नहीं हूँ, अभी मैं उठूंगा और सहन में झाड़ू लगाऊंगा, ताकि तुम भी समझ जाओ कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ।
तुमने नहीं कहा था सहन में कलाबाजी खाऊंगा? मत करो मत करो, कपड़े गंदे हो जाएंगे अली। सहन को साफ करो, अभी वो आ जाएंगे।
ठीक है अच्छी बाजी, ठीक है।
सलाम अम्मी चान, हमारे भाई को ले आए।
आओ मेरी बेटी, कमरे में आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को दिखाऊं।
सलाम सलाम मैया, सलाम सलाम भैया, सलाम सलाम भैया, सलाम सलाम भैया।
मैं कुर्बान जाऊं अली, आ जाओ कमरे में आओ, ताकि तुम्हें भी तुम्हारा प्यारा सा भाई दिखाऊं।
वाह कितना प्यारा है मेरा भाई।
वाह कितना प्यारा है। बाबा इसकी आंखें नहीं है क्या?
बेटा ये आंखें हैं, लेकिन शुरू के 2-3 दिन ये बंद रहती हैं।
बाबा जान इसका नाम क्या रखा है?
मैंने और तुम्हारी अम्मी ने फैसला किया है कि आज की मुनासिबत से दुनिया का सबसे अच्छा नाम इसके लिए रखें।
क्या नाम बाबा?
आज के लिए सबसे अच्छा और प्यारा नाम मोहम्मद है, फिर देखेंगे कि दादा जान क्या कहते हैं।
वाह मोहम्मद, मेरा कितना दिल चाहता था मेरा एक भाई हो जिसका नाम मोहम्मद हो।
अच्छा आने वाला कदम मुबारक हो, लाओ तो अपने इस नए पोते को देखूं।
आई आइए बाबा, और मोहम्मद के कान में अजानो अकामत कह दीजिए।
Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أري فاطمة
أشهد أن محمداً رسول الله
हाँ क्या हुआ
दादा जान ने तुम्हारे छोटे भाई का नाम उसके कान में क्यों कहा है
मैंने नहीं सुना
अरे मैंने खुद सुना है उन्होंने कहा मोहम्मद
अभी चुप रहो बाद में पूछेंगे
खुदा का शुक्र है उसने हमें फरिश्ता दिया
प्यारा प्यारा मोहम्मद
जब वो सोएगा
हम उसे लोरी सुनाएंगे ताकि अच्छे अच्छे ख्वाब देखे खुश रहे और हंसता रहे
तुम पूछो
क्या पूछना है अली
दादा जान अपने छोटे भाई का नाम उसके कान में क्यों कहा
वो नाम हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था
हजरत मोहम्मद ने हमारे लिए क्या किया है दादा जान
मेरी बेटी खुदा ने हजरत मोहम्मद को भेजा ताकि वो खुदा के पैगाम को हम तक पहुंचाएं और हमें सिखाएं कि खुदा की इबादत किस तरह करें और किस तरह अपनी जिंदगी में अच्छे इंसान बनकर रहें बच्चों हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं
वाह वाह मैं कितना खुश हूँ हमारा खुदा कितना अच्छा है मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ और हजरत मोहम्मद से भी मोहब्बत करता हूँ उन्होंने मुझे बताया है कि किस तरह अच्छा इंसान बन के रहूँ वाह वाह
अरे अली अभी हमारा एक सवाल बाकी है दादा जान क्यों कहते रहते थे कि आज के दिन की मुनासिबत से भाई का नाम मोहम्मद रखा है आज क्या बात है
मैं भूल गया कि आपको बताऊं आज यौमे मुबस है
यौमे मुबस क्या है दादा जान
मुबस वही दिन है अली जिस दिन खुदावंदे ताला ने हजरत मोहम्मद को भेजा ताकि वो हमारी हिदायत करें और अल्लाह के पैगाम को हम तक लेकर आएं।
वाह वाह हमारा भाई कितने अच्छे दिन दुनिया में आया है जिस दिन खुदा ने हजरत मोहम्मद को अपनी पैगंबरी के लिए मुंतखब किया
कहाँ मेरे भाई कहाँ
मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ उसको साफ करने मैं चाहता हूँ कि आज जश्न करूँ
मैं भी आऊँगी
हौसला नहीं है अली और फातिमा भी ऐसे ही हैं। अपने अब्बू और अम्मी के साथ बाजार गए थे पता नहीं बाहर क्या देखा जब से वापस आए हैं वहाँ सीढ़ियों पर बैठे हैं कभी कभी आपस में एक दो जुमले कहते हैं और फिर चुप हो जाते हैं वहाँ उस तरफ देखो
कितनी खूबसूरत थी। दो बड़ी लाइटें भी उसके आगे लगी हुई थीं।
उस खेलने वाली गाड़ी में हम दोनों के बैठने की जगह भी थी।
अगर बाबा उसे हमारे लिए खरीद लें तो हम मोहम्मद को पीछे वाली सीट पर बिठा लेंगे और पूरे शहर में चक्कर लगाएंगे।
उसका रंग भी कितना खूबसूरत था।
तुम बताओ, अगर हम उस पर बैठकर उसे जोर से दीवार में मार दें तो क्या होगा?
अभी तो बाबा ने हमारे लिए नहीं खरीदी।
फातिमा, तुम जाओ ना, पापा से कहो ना।
वो गाड़ी बहुत महंगी है और बाबा का जो इतना कर्ज है, मेरा नहीं ख्याल कि बाबा के पास इतने पैसे होंगे।
इतनी महंगी है? इतनी महंगी?
ये तो कुछ भी नहीं।
तो फिर इतनी?
इतनी ज़्यादा बातें ना करो, मैं अभी देखती हूँ किस तरह से बाबा से कहूँ।
चलो अच्छे बच्चे बनकर बाबा के पास बैठ जाते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, और फिर उनसे कहें।
अच्छा, मशवरा तो अच्छा है। ठीक है, उठो चले बाबा के पास।
उस वक्त जब दुकान के दरवाजे पर तुम दोनों की नजरें उस गाड़ी पर लगी हुई थीं, मैं समझ गया था।
बाबा, आपको कैसे पता चला? बाबा, इसे को खरीदेंगे ना?
हाँ बाबा, हमारे लिए उसे खरीदेंगे।
ठीक है, आपके लिए खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त है।
शर्त?
हाँ मेरी बेटी, अगर कोई इनाम चाहता है उसे हतमन कोशिश करना चाहिए।
क्या शर्त?
फातिमा अपनी क्लास में पहली पोजीशन ले, और अली भी अच्छा बच्चा बनकर रहे और कोई शैतानी ना करे।
पहली पोजीशन?
हाँ मेरी बेटी, अगर कोई इनाम चाहता है उसे हतमन कोशिश करना चाहिए। जो कोशिश और मेहनत नहीं करता वो पशिमान होता है। कहाँ फातिमा?
आखिर मैं चाहती हूँ कि पहली पोजीशन लूँ तो फिर मुझे अभी से दर्स पढ़ना होगा।
अली, तुम कहाँ
जा रहा हूँ? ताकि अच्छा बच्चा बनूं। किस तरह? हाँ हाँ, समझ गया। आइंदा गरीब में लड़ाई नहीं करूँगा और शोरोगुल भी नहीं करूँगा, कलाबाजी भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं, खामखा रोना भी नहीं शुरू करूँगा। अभी सहन में जाता हूँ और दीवारों को रुमाल से साफ करता हूँ ताकि अम्मी को अच्छा लगे और अम्मी खुश हो जाए। सलाम प्यारे दादा जान।
वालेकुम सलाम अली, खुदा खैर करे, आज पता नहीं क्या बात है।
सलाम सलाम दादा जान, बैठिए मैं आपके लिए चाय लाऊं।
हाँ दादा जान, मैं आपको पंखे से हवा देता हूँ ताकि आपको गर्मी ना लगे।
अच्छा तो फातिमा कहाँ थे तुम लोग, आज सहन से शोर गुल नहीं आ रहा था।
मैं अपना दर्स पढ़ रही थी।
वाह क्या बात है, कितने अच्छे हो गए हैं ये दोनों बच्चे।
जी दादा जान, बाबा ने वादा किया है अगर मेरे 100% नंबर आए और अली भी अच्छा बच्चा बनकर रहे तो इनाम के तौर पे उस गाड़ी को हमारे लिए खरीदेंगे।
हाँ हाँ, तो यूँ कहो कि क्यों सबक पढ़ने में लगी हो, और अली भी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इनाम हासिल कर सको।
जी हाँ दादा जान, देखा आपने हमारे बाबा को कितने अच्छे और मेहरबान हैं। देखा इन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमारी मेहनत को जाया नहीं करेंगे।
दादा जान, अगर आप चाहें तो हम आपको भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया करेंगे, अगर जगह हुई तो।
हाँ बच्चों, तुम्हारे वालिद बावजूद इसके के एक आम इंसान हैं, जबकि तुम्हारी मेहनत और कोशिश इसलिए अच्छी है जिसे तुम इनाम से खाली नहीं समझते। दूसरी तरफ लोग फिक्र करते हैं कि अगर हम खुदा की रजाइयत के लिए अच्छे काम अंजाम दें तो क्या मेहरबान खुदा उन कामों को बगैर नतीजे के छोड़ देगा। वो भी ऐसा खुदा जो हर काम को देखता है और हर बात को सुनता है।
दादा जान, खुदा हमें क्या देगा अगर हम अच्छे हों तो?
अगर अच्छे हों तो हमारी जगह जन्नत है। जन्नत में हर चीज जो तुम चाहो वो है।
अगर बुरे हों तो फिर?
अल्लाह ना करे तुम बुरे हो मेरे बेटे। अलबत्ता जो लोग बुरे काम करते हैं अल्लाह ताला उनको सजा देता है और उनको जहन्नम की आग में डाल देता है।
कब दादा जान?
कयामत के दिन मेरी बेटी, कयामत के दिन।
उस दिन तक तो हम मर चुके होंगे।
हाँ बेटे, जब सब लोग मर जाएंगे तो कयामत के दिन सब आएंगे। खुदावंदे ताला सबको जिंदा करेगा और सबके अच्छे बुरे अमाल के जर्रे जर्रे का हिसाब होगा।
किस तरह?
जिस किसी ने भी कोई अच्छा काम किया होगा, चाहे मामूली सा ही क्यों ना हो, उसका बदला जरूर पाएगा। और जो कोई बुरा काम करेगा, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी खातिर सजा पाएगा। मेरे बच्चों,
दादा जान मैं चाहती हूँ नमाज पढ़ूं, और आप मुझे नमाज सिखाएंगे ना?
हाँ मेरी बेटी, पहले जाओ वुजू करो फिर आओ, जाओ जल्दी जाओ।
मैं नमाज पढ़ना जानता हूँ। पहले यूँ खड़े होते हैं, फिर ऐसे और फिर ऐसे।
लेकिन तुम्हारा तो वजू नहीं है ना, उठो उठो साथ चलते हैं और तुमको वजू सिखाती हूँ।
सलाम दादा जान, बीमार है, आज इस घर में कोई भी खुश नहीं है, उनको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। फातिमा बर्तन धो रही है, अली पौधों की तरफ टिकटिकी लगाए बैठा है, वहाँ है वो।
क्या कह रहे हो?
घर की चाबी दो, मुझे बाहर जाना है।
नहीं दूंगी, बाहर जाना चाहते हो? ताकि बच्चों के साथ मिलके शोरगुल करो और हमसाये तंग हो।
घर की चाबी दो।
खामखा तंग ना करो, अम्मी ने कहा था तुम्हारे लिए दरवाजा ना खोलूं जब तक वो खुद ना आए।
मैं कितना बेबस हूँ।
ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं देखूं तुम कहाँ जाना चाहते हो।
फातिमा तुम्हें दादा की कसम मुझे चाबी दे दो, मैं एक जगह जाना चाहता हूँ।
अच्छा ये लो चाबी।
लेकिन मुझे दरवाजा खोलना नहीं आता, मेरे लिए दरवाजा खोल दोगी?
मैं भी जानती हूँ तुम दरवाजा खोलना नहीं जानते, जब तक नहीं बताओगे कहाँ जाना है दरवाजा नहीं खुलेगा।
दादा जान क्यों बीमार हुए हैं? क्या खुदा जालिम है?
हाय अली ऐसा ना कहो, गुनाह है।
मैं इमाम दादा के मजार पर जाना चाहता हूँ ताकि दादा जान के लिए दुआ करूँ और खुदा से कहूँ कि मुझे माफ कर दे, अब कभी बुरे काम नहीं करूँगा, लड़ाई भी नहीं करूँगा, घर को गंदा नहीं करूँगा, बिल्ली को नहीं मारूँगा, आग भी नहीं जलाऊंगा।
अच्छा अच्छा मेरे प्यारे भाई, रो मत, सब्र करो। अच्छा सोचा है, ठहरो मैं जरा चादर पहन लूं, फिर इकट्ठे चलते हैं इमाम ज़ादा के रोजे पर।
ए खुदा दादा जान अच्छे हो जाएं तो हमेशा उनके लिए शेर पढ़ूंगा ताकि वो हंसे, और नमाज भी पढ़ूंगा, और जब कहें मेरे पास आओ मैं तुम्हारे लिए उदास हो गया हूँ तो ऐसे नहीं कहूँगा कि मेरे पास वक्त नहीं है।
चलें अली। ओहो कोई आया है। अली दरवाजा खुला है, अम्मी वगैरह आ गए हैं।
मेरी तबीयत ठीक है अली जान, परेशान ना हो।
दादा जान डॉक्टर ने आपको टीका लगाया है?
एक छोटा सा, जिसकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया हूँ।
दादा जान?
जी मेरी जान अली।
दादा जान खुदा इंसान को क्यों बीमार करता है और उन पर मुसीबत डालता है? क्या वो जालिम है?
हाय अली अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसी बातें गुनाह है। इमाम ज़ादा के मज़ार पर भी ऐसी ही बातें कर रहा था दादा जान।
नहीं अली जान, खुदा आदिल है।
आदिल है का क्या मतलब?
यानी किसी पर जुल्म नहीं करता और सबसे मोहब्बत करता है।
तो फिर खुदा इंसान को क्यों बीमार करता है और उन पर कई तरह की मुसीबतें लाता है?
मेरे प्यारे अली, खुदा बहुत ज्यादा आदिल है और किसी के भी हक में जुल्म नहीं करता। अगर तुम देखते हो कुछ लोग बीमार होते हैं और उनके सर कोई मुसीबत आती है तो वो या हमारे गुनाहों की वजह से है जो खुदा इन मुसीबतों के जरिए हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, या हम इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए है।
इम्तिहान?
हाँ अली जान, खुदा चाहता है कि हमसे इम्तिहान ले।
तो फिर हम क्या करें?
तो फिर हमें अल्लाह के इम्तिहानों में 100% नंबर लेने चाहिए।
किस तरह? क्या हम जाएं और सबक पढ़ें?
हाँ अली जान, सख्त सबक। हमें इन मुसीबतों के मुकाबले में सब्र करना चाहिए ताकि हमारे नंबर अच्छे हों।
दादा जान काश मैं बहुत ज्यादा बीमार होता।
क्यों अली?
क्योंकि इतने ज्यादा बुरे काम किए हैं तो बीमारी की वजह से पाक हो जाता ना, और फिर मैं ठीक हो जाता।
نہیں علی جان، خدا عادل ہے، تم بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔
میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں جب بھی بیمار ہوا تو روؤں گا نہیں، تاکہ میرے پورے نمبر آئیں۔
حتیٰ ڈاکٹر ٹیکا لگائے تب بھی؟
نہیں نہیں، خدا نہ کرے دادا جان۔
ابھی آپ نہ آتے، بچوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے، آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ فاطمہ کی ٹیچر جو فوت ہو گئی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے گھر میں سب کو یہ خبر سنائی ہے۔ علی اس بات سے بہت ڈر گیا ہے اور بھاگ کر تہہ خانے میں چھپ گیا ہے اور باہر نہیں آ رہا۔ اس کی آواز آ رہی ہے، سنو ذرا۔
علی ڈرنے کی بات نہیں، باہر آؤ۔
نہیں، تمہاری ٹیچر مر گئی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
اوہو، یہ تو ڈرنے کی بات نہیں۔
کیوں نہیں، تم خوفناک لگ رہی ہو، تمہاری ٹیچر مر گئی ہیں۔
تم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔
فاطمہ، میں تم سے ڈر رہا ہوں، غصہ نہ کرنا، زیادہ خوفناک ہو جاؤ گی۔
اگر چاہتے ہو کہ غصہ نہ کرو تو فوراً باہر آ جاؤ۔
نہیں فاطمہ، صرف یہ مجھ سے نہ کہنا، اور جو کچھ کہو گی کروں گا۔
پیارے بھائی، موت برحق ہے، ہم سب مر جائیں گے، اس میں ڈرنے والی بات نہیں۔
نہیں، میں نہیں مرنا چاہتا۔
کیوں؟ آخر میں بوڑھے ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔
نہیں، میں جب بڑا ہوں گا ایک ایسی گولی بناؤں گا جو اسے کھائے گا ہمیشہ زندہ رہے گا، کارٹونوں کی طرح۔
ارے یہ سب جھوٹ ہے، آخر میں سب مر جائیں گے۔
میں تم سے ڈرتا ہوں۔
کیوں ڈرتے ہو میرے بھائی؟ تم مجھ سے کیوں ڈرنا چاہتے ہو؟ میں تو نہیں مری، میری ٹیچر اللہ کو پیاری ہوئی ہے۔
تم خوفناک ہو۔
تم خود خوفناک ہو۔ اچھا تو اب ایسا ہے، وہاں اتنا رہو کہ وہیں مر جاؤ، اگر تم باہر آؤ گے تو میں تم کو کھا جاؤں گی۔ آپ بتائیں دادا جان، میری ٹیچر مر گئی ہیں، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟
دادا جان بھاگ جائیں، اس کی ٹیچر مر گئی ہیں اور مجھ سے بھی کہتی ہے میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ بھاگ جائیں دادا جان، بھاگ جائیں۔
میری بیٹی فاطمہ، تم بتاؤ میں کیوں بھاگوں؟
فاطمہ، خدا کے لیے دادا جان کا نہ کھاؤ، میں خود ابھی اوپر آؤں گا، مجھے کھا لو۔
چپ کرو، میں کوئی آدم خور ہوں؟
یعنی مجھے نہیں کھاؤ گی؟
میں تمہیں کیوں کھاؤں گی؟
اس لیے کہ تمہاری ٹیچر مر گئی ہیں۔
واہ، اس بچے نے تو میری ناک پہ دم کر رکھا ہے۔ دادا جان، میری ٹیچر اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔
اے خدا اس پر رحمت کرے۔
میں گھر آئی تو علی کو بتایا، ابھی میری بات مکمل نہ ہوئی تھی تو دیکھا علی بھاگ گیا، تہہ خانے میں چلا گیا اور باہر نہیں آ رہا، کہتا ہے کہ تمہاری ٹیچر مر گئی ہیں، میں تم سے ڈرتا ہوں، پتہ نہیں اب کیا کروں دادا جان۔
خوب سمجھ گیا کہ مسئلہ کہاں ہے۔
کہاں دادا جان؟
آؤ آؤ فاطمہ، جاؤ دو آئس کریم اپنے لیے اور علی کے لیے خریدو، تاکہ علی بھی آ جائے، پھر میرے کمرے میں آؤ تاکہ اکٹھے مل کر کھائیں۔
دادا جان، اگر وہ میرا حصہ کھانے لگے تو آپ نے اسے کھانے نہیں دینا۔
علی اوپر آ جاؤ میرے پاس، اور جب فاطمہ آئس کریم لے آئے تو اکٹھے مل کر کھائیں گے۔
یعنی میں نہ ڈروں؟
نہیں بیٹا، اس میں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔
آخر اس کی ٹیچر مر گئی ہیں۔
سب آخر میں مر جائیں گے۔
لیکن آپ کبھی نہ مرنا دادا جان۔
آؤ آؤ علی، چلے میرے کمرے میں اور تم اپنی آئس کریم کھاؤ، اتنے ڈرپوک نہ بنو۔
علی تم یہاں ہو، آئس کریم کی خوشبو آ گئی تمہیں پیٹو؟
آئس کریم میں تو کوئی ڈرنے باجی، تو مجھے آئس کریم کی خوشبو نہیں آئی، بلکہ میری ناک آئس کریم سے جا لگی ہے۔
نہیں میں خوفناک ہوں۔
کھاؤ کھاؤ بچو، لیکن ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا تو فاطمہ، تمہاری ٹیچر تو اللہ کو پیاری ہو گئی، کیا اب تمہارے اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے؟
نہیں دادا جان، ہمارے پرنسپل نے ایک نیا ٹیچر بلوا لیا ہے تاکہ ہمارے درس پیچھے نہ رہیں۔ ہمارے پرنسپل نے کہا ہے کہ یہ ہماری نئی ٹیچر ہیں اور ہمیں ان کی سب باتیں غور سے سننی ہیں۔
ہاں میری بیٹی، یہ نہیں ہو سکتا کہ طالب علم کو بغیر استاد کے چھوڑ دیا جائے۔
انسانوں کے بارے میں یہ کیسا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو بغیر استاد کے چھوڑ دیا جائے؟
تمہارا مطلب نہیں سمجھا میری بیٹی، کھل کر کہو۔
دادا جان، کیا آپ نے نہیں کہا تھا خدا نے حضرت محمد کو بھیجا ہے کہ وہ ہم انسانوں کے استاد ہوں اور ہمیں سکھائیں کہ کس طرح سے اچھے انسان بنیں؟
ہاں میری بیٹی ٹھیک ہے۔
دادا جان، اس کے بعد حضرت محمد اس دنیا سے چلے گئے، کیا خدا نے ہم انسانوں کو بغیر استاد کے ہی چھوڑ دیا؟ کیا ہمارے درسوں کی چھٹی ہو گئی؟
آہا میری بیٹی، تمہارا مطلب یہ ہے کہ بعد از رسول اللہ ہمارا رہبر کون ہے؟
جی ہاں دادا جان، ہم حضرت محمد کے بعد کس کی باتوں پر عمل کریں؟
خدا نے ہمارے محمد جو ہمارے نبی ہیں ان کے بعد ہمارے لیے جانشین منتخب کیے ہیں۔
جانشین؟
ہاں میری بیٹی، یعنی وہ جو حضرت محمد کی جگہ ہم مسلمانوں کے رہبر ہوں ہر زمانے میں، اور ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔
پیغمبر کا جانشین کون ہے دادا جان؟
بیٹی جلدی نہ کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ کون سب سے زیادہ حضرت محمد کے نزدیک تھا، کون ان کا داماد تھا؟
سب سے زیادہ نزدیک حضرت محمد کے، ہاں میں سمجھ گئی دادا جان، اس کی چچا کے بیٹے حضرت علی اور حضرت محمد کے دوست بھی ہیں۔
ہاں اور وہ حضرت محمد کے نواسوں کے والد بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین کے۔
جی ہاں دادا جان بالکل ٹھیک۔
تو پھر حضرت محمد کے بعد ہمارے امام کون ہیں؟
حضرت علی دادا جان۔
یعنی حضرت علی ابھی تک زندہ ہیں؟
نہیں علی، حضرت علی علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں اور ہمارے 12 امام ہیں۔
اب کیا، ابھی ہمارا رہبر کون ہے؟
ابھی ہمارے رہبر امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔ ارے بچوں، آج ہمارے زمانے میں امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔
امام زمانہ کہاں ہیں دادا جان؟
امام زمانہ علیہ السلام ابھی غائب ہیں، یعنی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔
یعنی کوئی بھی امام کو نہیں دیکھتا؟
کیوں نہیں علی، اگر انسان بہت اچھا ہو تو امام علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے۔
تو پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ بہت اچھا بنوں تاکہ امام زمانہ کے پاس جا سکوں دادا جان۔
واہ، خدا کس قدر مہربان ہے، کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، کبھی بھی ہم کو بغیر استاد کے نہیں چھوڑا۔ دادا جان، میں امام زمانہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔
بازم وقت عجونه، خروس آواز میخونه، بچه خوب سر وقت نمازش رو میخونه، بچه ای که زرنگه با شیطونا میجنگه، قرآن رو خوب میخونه، اصول دین میدونه، اصول دین که پنجتاست، دستور خوب خداست، اصول اول ما توحید، آی بچه ها، خدا دوتا نمیشه، کاراش خطا نمیشه، خدا که دیدنی نیست، صدا شنیدنی نیست، دومی شد نبوت، تا ما بشیم هدایت، رسول آخر ما محمد مصطفی، سومی یادت میاد روز قیامت معاد، اونجا همه جمع میشن از زندگیشون میگن، چهارمی رو زود میگم عدالت رو یاد میدم، خدا که ما رو دوست داره عدل و برامون میذاره، چهارمین اصوله برا همه قبوله، چیه بعد عدالت؟ خودم میگم امامت، این دیگه پنجمی بود، اصول دین همین بود، پنجتاش یاد گرفتی؟ بیا عقب نیفتی، برای که یادت نره تکرار بکن دوباره، میگه که یادت میاد توحید نبوت معاد، دوتای دیگه چیه؟ عدل و امامت دیگه، یه بچه مسلمون بچه خوب ایرون با همه مهربونه، شیرین و خوش زبونه،